बहुत बहुत धन्यवाद नंदो जी और बाकी सभी भाइयों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हम वेदना और तृष्णा के बीच में जो संधि है या खुफिया दरवाजा है उसको देख रहे थे। यह बीच वाली संधि जो है यानी प्रकाश है, जब सूर्योदय होने के पहले का प्रकाश और सूर्यास्त होने के पहले का प्रकाश, तो वो प्रकाश को संधि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह प्रकाश हमें सुबह की रोशनी देता है और शाम का वह प्रकाश हमें रात में लेके जाता है। उसी प्रकार भवचक्र में और प्रतित्य समुत्पाद में भी एक संधि है जिसको ट्वाइलाइट कहते हैं। तो यदि हमें इस चक्र में घूमना है बार 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 या फिर इससे बाहर निकलना है, ये हमें तय करना पड़ता है। हमने कल ये देखा था कि हमें संकल्प करना है कि अभी ये दुख में चक्कर लगाने का सिलसिला बहुत हो गया, अभी यहां से मुझे बाहर पड़ना है, बाहर निकलना है। और इस बाहर निकलने के दो रास्ते बुद्ध ने बताए हैं, एक है तुरंत मार्ग और दूसरा है क्रमशः जाने वाला मार्ग, धीरे धीरे जाने वाला मार्ग, आहिस्ता आहिस्ता जाने वाला मार्ग। तो तुरंत मार्ग जो है जिसको सडन वे कहते हैं, उसके लिए हमने बाह्य की कहानी देखी थी कि बाह्य बहुत ही आतुर था भगवान बुद्ध को मिलने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। कहीं दूर गांव में उनकी दीक्षा हुई थी और वे जब बुद्ध को मिलने आए तो बेताब थे, आतुर थे कि कब मैं बुद्ध को मिलूं और कब मैं उनके मुंह से शिक्षा ग्रहण करूं। और हमने उस कहानी में ये भी देखा कि बहुत बेताब था बुद्ध का, तो रिवाज था कि भिक्षाटन के समय किसी से बात नहीं करते थे वो, तो तीन बार उसकी आवाज सुनते हैं लेकिन तीसरी बार फिर वो वहां खड़े हो जाते हैं, उसको देखते हैं, मुड़कर देखते हैं और उसको शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। और वह उपदेश बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने दिया था कि देखने में केवल देखना है, सुनने में केवल सुनना है, स्पर्श में केवल स्पर्श करना है, स्वाद लेने में केवल स्वाद लेना है, गंध लेने में केवल गंध लेना है और विचार करने में केवल विचार करना है। तो इन पंक्तियों को जब बाह्य ने सुना तो जहां वो खड़ा था वहीं उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वहीं उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। और तुरंत मार्ग के अलावा हमने दूसरा एक मार्ग देखा था जिसको ग्रेजुअल वे कहते हैं या क्रम क्रम से जाने वाला मार्ग। उसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि ये दुख में अभी बहुत दिन मैंने बिताए हैं और अभी इस दुख से मुझे पूरी तरह से बाहर निकलना है। तो ये दुख से बाहर निकलने के लिए भगवान बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं हैं जिसके माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग है, दस भूमि है, सप्त विशुद्धि मार्ग है और बारह निदान का भी एक मार्ग हमने उस कल देखा था कि बारह निदान से भी हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी शिक्षा है भगवान बुद्ध की और वह देखते समय हमने ये भी देखा है कि अभी यहां से मुझे छुटकारा पाना है। और फिर हम सोचते हैं कि कौन सा मार्ग है, यदि हम गलत रास्ते से गए तो किधर भी भटक जाएंगे, लेकिन अगर सही रास्ता मिला तो जरूर हम उस रास्ते से चले तो निर्वाण की ओर जा सकते हैं। तो इस तलाश में हम रहते हैं कि कौन सा मार्ग है कि जहां से मैं इस भवचक्र से बाहर निकल सकूं। और फिर हमने कल देखा था कि वह है श्रद्धा का मार्ग। श्रद्धा के मार्ग से हम इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। शुरू शुरू में यह श्रद्धा संभ्रमित अवस्था में होती है, लेकिन अंतिमतः पूरी तरह से हम त्रिरत्न को शरण जाते हैं, त्रिरत्न अपनाते हैं और बड़े जोर से जोश से त्रिरत्न का हम आचरण, त्रिरत्न में हम शरण लेते हैं। अभी उसी दुख को और श्रद्धा को और थोड़ा सा हम आगे लेके जा रहे हैं। जब दुख से श्रद्धा का निर्माण होता है तब आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है, ऐसा कहा है। यहां दो प्रकार के अनुभव हमने लिए हैं। एक अनुभव पूरी तरह से लिया है, वह है दुख का अनुभव, और दूसरा अनुभव हम अब लेने जा रहे हैं और वह है श्रद्धा का अनुभव। दुख का पारंपरिक स्पष्टीकरण ऐसा किया गया है, उसमें दु और ख ऐसे दो शब्द है। ख यानी हम जैसा लिखते हैं वैसा नहीं है, ये पाली का ही दुख हमें हमेशा लिखना है। इस तरह से हम हमेशा दुख को इस तरह से लिखना है, हम हमेशा ऐसा लिखते हैं। तो यहां दो अक्षर फिर होते हैं, ये दु और ये ख। दु का मतलब है बुरा गलत या अनुचित, बुरा गलत या अनुचित, ऐसा वो दू का अर्थ होता है और ख का अर्थ है चक्का, जो गाड़ी का चक्का होता है, रथ का चक्का होता है, उसको ये ख से वो अर्थ निकलता है। इसका मतलब यहां ऐसा होता है कि ये चक्का है, लेकिन ये चक्का अभी वो रथ को ठीक तरह से बैठा हुआ नहीं है। ऐसी हमारी अवस्था होती है, हमारा ये शरीर मानो रथ है, लेकिन उसका चक्का ही ठीक नहीं होने के कारण फिर वो रथ ठीक तरह से चलता नहीं है। लेकिन रथ से तो हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा करते करते घबराहट भी है मन में और दुख भी है कि ये रथ कहीं पलटी ना खा जाए और मेरा अंत ना हो जाए, तो इस तरह का ये भय भी है, डर भी है। और उस बिगड़े हुए चक्के के कारण हम दुखी हो जाते हैं। वैसे ही हमारा चक्का जो है, हमारे शरीर का चक्का बिगड़ा हुआ है। इसे एक बार बुद्ध भी कहते हैं कि मेरा शरीर अब कैसा हो गया है, आपको शायद पता होगा वो कि मराठी सांगता काय सांगू आता मोडकळी साल तो हमारा शरीर ऐसा है कि मरम पट्टी जब करते हैं शरीर को, यानी गाड़ी को इधर से बांध देते हैं, उधर से बांध देते हैं, चक्का ठीक तरह से चलता नहीं है, वैसे मेरा शरीर अब हुआ है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मेरा मन अभी भी बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल फ्रेश है। अपनी बात बिल्कुल अलग है, अपना शरीर भी यानी ठीक ठाक नहीं है और मन तो उससे ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। दोनों भी तरह से हम कैसे हैं, गए गुजरे हैं, हम दोनों भी तरह से गए गुजरे हैं। अभी उस समय के रथ को वो स्प्रिंग नहीं होते थे, आजकल के गाड़ियों को स्प्रिंग होते हैं, जर्क नहीं बैठता, लेकिन उस समय रास्ते भी ठीक नहीं थे, वो स्प्रिंग भी नहीं है, हाँ, तो वो जो रथ चलता था तो फिर कभी ऐसा होता होगा, कभी ऐसा होता होगा, तो उसमें अगर बैठे हम तो हमें हमेशा ही गिरने का डर होता है। तो अपनी अवस्था ऐसी है, गिरने जैसी है, कब गिरूं मैं और कब क्या होगा मेरा, इसका भरोसा नहीं है। इसलिए इस दुख से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हर दिन में जो जो बातें घटती है उनके कारण मैं पूरी तरह से अस्वस्थ बन जाता हूं। मैं 100% पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन के जैसे चीजें क्यों नहीं हो रही है, हमारे मन के जैसी चीजें होती ही नहीं, क्योंकि अपना मन ही कलुषित है, मन सुस्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो मन में आने वाली बातें भी ऐसे ही अशुद्ध होने के कारण फिर हमें दुख होता है, हमें असमाधान होता है। लेकिन हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और अब हमें रास्ता मिल जाता है। अभी तक हमने उस रास्ते को नजरअंदाज किया था, देखा नहीं था, उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि हमें वही रास्ते से जाना है, दिख रहा है, लेकिन अभी जाने की कोशिश हमने करनी है। तो हम फिर उसके लिए प्रतिसाद देते हैं। ये प्रतिसाद देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ता पहले भी देखा है हमने, अभी भी देख रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे मन को हम मैं प्रतिसाद दे रहा हूं कि अभी उस रास्ते से मुझे चलना है, जाना है। और उस रास्ते से मुझे जाना है, ऐसे जब मैं प्रतिसाद देता हूं तो वहां श्रद्धा का निर्माण होता है। अभी श्रद्धा की ओर बढ़ेंगे हम। श्रद्धा का मतलब विश्वास नहीं है, बिलीफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बिलीफ नहीं है। और अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है, विश्वास भी नहीं है और अंधविश्वास भी नहीं है। तो श्रद्धा की व्याख्या ऐसी की गई है कि जो मुझ में अतिच्य है, उसका विश्व में जो अत्युच्च है उसके लिए दिया हुआ प्रतिसाद, उसको श्रद्धा कहते हैं। विश्व में जो अत्युच्च बात है, उस अत्युच्च बात को मेरे अंदर वाली जो अत्युच्च बात है वह प्रतिसाद देती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और यह प्रतिसाद कैसा है, भावनिक प्रतिसाद है, केवल बुद्धि के द्वारा दिया हुआ प्रतिसाद नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनिक प्रतिसाद कहा है उसको। और यहां हम भावनिक प्रतिसाद जो बताते हैं वो किसके प्रति बताते हैं, तो त्रिरत्नों के प्रति हम भावनिक प्रतिसाद बताते हैं। बुद्ध धम्म संघ यही मेरे आदर्श है, और उन आदर्शों के प्रति मैं मेरा प्रतिसाद व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि बुद्ध धम्म संघ ये इतने मौल्यवान है, उनकी कीमत नहीं की जा सकती, ये मुझे अभी समझ में आया है। तो यह अंधश्रद्धा नहीं है। यहां जो जो बुद्ध में सद्गुण है, उन सद्गुणों को मैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करता हूं, उन सद्गुणों का मैं पुण्यानुमोदन करता हूं, और उनमें जो सत्यता है उस सत्यता को मैं पाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। बुद्ध में जो सद्गुण है उनका मैं पुण्यानुमोदन करना कर रहा हूं। मैंने ये जान लिया है कि ये अमूल्य है, और उनको मैं पाने की अभी कोशिश कर रहा हूं, मेरी पाने की इच्छा बढ़ रही है। इसका मतलब मैं अभी उसको प्रतिसाद दे रहा हूं, उसका आदर कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं। अभी यहां एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम यहां किसी भगवान पर या किसी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। ईश्वर पर श्रद्धा नहीं होती, वो विश्वास हो जाता है। ईश्वर पर जो हम जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिए, वो श्रद्धा के भाव से नहीं है। तो हमें कुछ उनसे मिलना है, पाना है उनसे, इसलिए हम वो कर रहे हैं, तो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। श्रद्धा के तीन अंग बताए हैं, एक है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, जिसको बौद्धिक अंग कहेंगे। दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट, भावनिक अंग है। और तीसरा है वॉलिशनल एस्पेक्ट, जिसको हम अभी पूरे मन के साथ उस पर अभी विश्वास कर रहे हैं, उस श्रद्धा के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ, मन के साथ अभी उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। अभी बौद्धिक श्रद्धा कैसे होती है? बौद्धिक श्रद्धा में हम धम्म पूरी तरह से जानते हैं। धम्म जानने के बाद हम पूरी तरह से समाधानी होते हैं, उस पर हमारा पूरा भरोसा अभी बन जाता है, पूरा भरोसा करते हैं हम। और जब उस पर भरोसा हो जाता है तो फिर हम धम्म ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं। तो ये सब बातें बौद्धिक एस्पेक्ट में, बौद्धिक अंग में आती है। दूसरा जो अंग है उसको भावनिक श्रद्धा कहते हैं। इस भावनिक श्रद्धा में हम ये बौद्ध जीवन जो हम जी रहे हैं उनमें जो सकारात्मक गुण हैं, इस बौद्ध जीवन जीने में जो सकारात्मक गुण हैं, उनसे हम आकर्षित हो जाते हैं और भावनिक प्रतिसाद देने लगते हैं। फिर भावनिक प्रतिसाद और भी कुछ बातों से हम देने लगते हैं। हमने बौद्धिकता से बुद्ध के गुणों को देखा है, उनके धम्म को भी देखा है, जाना है, समझा है, तो अभी उन बौद्ध गुणों की हम पूजा करने लगते हैं, यानी पूजा का अंग यहां हमारा बढ़ता है। पूजा का अंग बढ़ना इसका मतलब है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट बढ़ना। यदि बुद्धि है और भावना नहीं है तो आदमी शुष्क बन जाता है। और केवल भावना है और बुद्धि नहीं है तो वो भटकता है, अलग रास्ते से भी जा सकता है, या उसके अंदर अंधश्रद्धा भी पैदा हो सकती है। तो यहां दोनों बातों की जरूरत है, बौद्धिकता भी चाहिए और भावनिकता भी चाहिए। तो भावनिकता आपकी पूजा के माध्यम से बढ़ती है। हम जब अभी हम जब पूजा करते हैं तब वास्तव में हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। जो जो हम गा रहे हैं या पठन कर रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी उस पूजा में रुचि निर्माण होती है। बंते जी हमेशा कहते हैं कि पूजा करते समय उसके अर्थ के साथ आप पूजा कीजिए, अर्थ को जानिए, अर्थ को समझिए, तभी उस पूजा में हमें आनंद आता है। नहीं तो हम पाली बोल रहे हैं उसका अर्थ हमें मालूम नहीं है तो ड्राई हो जाते हैं, हम शुष्क हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है, कितने देर तक चलेगा, इस तरह से हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन एक एक शब्द का अर्थ अगर हमें पता है और हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें और अपनी भावनिकता बढ़ती ही रहती है। पूजा से भक्ति भाव भी बढ़ता है, डिवोशनल एस्पेक्ट जिसको कहते हैं, हमारे डिवोशंस बढ़ते हैं। यह भक्ति भाव, इसका मतलब यह हिंदू धर्म से शब्द निगड़ित है ऐसा नहीं है। पाली में शब्द है भक्ति, उसको भक्ति कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्ध भक्ति को नहीं मानते थे, क्योंकि भक्ति यह पाली शब्द है। अभी हमने जो बुद्ध धम्म संघ का मार्ग चुना है उस पर हमारा अभी पूरा दृढ़ विश्वास बना है। इस भावना के कारण, इस भावनिक अंग के कारण पूरा अभी दृढ़ विश्वास उन पर हमारा बढ़ गया है और हम अब बदलना चाहते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। और ये तीसरा जो अंग है, तीसरा श्रद्धा का जो अंग है, उसमें हम ये जानते हैं कि मैं धम्माचरण करने के लिए अभी सक्षम बन गया हूं, शीलाचरण करने के लिए अभी मैं सक्षम बन गया हूं। और फिर हम हर रोज ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारी अकुशल बातों को कम करने की कोशिश करते हैं, कुशल बातों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहां ये वोल्यूशनल एस्पेक्ट जो बताया है, इसका मतलब यहां हम अभी अनुभव कर रहे हैं। ये श्रद्धा कैसी है, अनुभव के तौर पर अभी हम उसको देख रहे हैं। यहां शील और श्रद्धा का गहरा संबंध है। श्रद्धा का और एक उदाहरण दिया गया है कि कोई एक व्यक्ति होता है और उसने कोई जंगल में बहुत दूर सोने की खान देखी है, खदान देखी है, और वह वापस आता है गांव में और लोगों को कहता है कि मैंने उस जंगल में सोने की खदान देखी है। लोग उस पर विश्वास नहीं रखते, क्या पागल है क्या, ऐसा ही बोलेंगे उसको। वैसे ही हमें भी लोग पागल ही कहते हैं। ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वाले इनको दूसरा एक और मेंटल हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा इनके लिए, इनकी तादाद बहुत है, संख्या ज्यादा है। तो उस आदमी को वो पागल समझते हैं, क्या ऐसा कभी होता है क्या, ऐसी सोने की खदान है क्या कहीं। लेकिन वो देखता है कि कुछ लोग वो रास्ते से पहले ही चल रहे हैं, उसने बताया लोगों को और लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो फिर उसको भी लगता है कि अरे कुछ तो भी होगा उधर, सब लोग जा रहे हैं तो अभी मुझे भी जाना है। और इस तरह से वो भी उस रास्ते से चलने लगता है और वो आगे जाके जब देखता है तो सही भी वहां सोने की खदान है। लेकिन वो सोने की खदान का खोज किसने किया, वो बुद्ध ने किया। और बुद्ध लोगों को बता रहे हैं कि उधर है, वो निर्वाण है, ऐसा ऐसा रास्ता है, आपको जाना है। जाने वाले लोग जाते रहते हैं, मेरे जैसे लोग वहीं खड़े हो जाते हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, उधर जाऊं, और किधर भी नहीं जाता, वो उधर ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन जब पूरा भरोसा होता है, पूरी श्रद्धा, जो जो लोग जा रहे हैं और जिसने बताया है उन पर पूरी श्रद्धा बन जाने के बाद मैं भी चल पड़ता हूं और आखिर में मैं भी निर्वाण को प्राप्त करता हूं। लेकिन उसके लिए संघ की जरूरत है। वहां जाने के लिए खाली अकेला आदमी नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, इधर उधर भटकते रहेगा वो। तो संघ की जरूरत है और अपने पास ये सभी बातें उपलब्ध है। हमारे यहाँ बुद्ध है, अपने पास धम्म है, अपने पास संघ है, तीनों भी बातें हैं। तो इन सोने की खदान को, इस सोने की खदान को अगर हमें देखना है, पाना है, वहां तक जाना है, यानी बुद्धत्व की खदान को देखना है, जाना है वहां तक, तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ वहां जाने के लिए सुविधाएं चाहिए वो पूरी उपलब्ध है, लेकिन आपको अभी वो जूते डालना है, सॉक्स डालना है, रक्सैक लेना है, ये सब आपको करना है। आपके शरीर पर सब ये कोई भी लगा के नहीं देगा, यहाँ भी जा तू। इसका मतलब ये है कि आपको ही धम्म क्लास में आना पड़ेगा, आपको ही शिविर में आना पड़ेगा, आपको ही ध्यान करना पड़ेगा, आपको ही सब करना पड़ेगा। खाली बोल दिया है कि उधर रास्ता है जाने का, तो हमने ही जाना है, किसी और की मदद से हम नहीं जा सकते। अरे क्या वो आता ही नहीं क्लास को, तो मैं कैसे आ जाऊं? उसके साथ मैं जा रहा था लेकिन अभी वो आता ही नहीं, क्या करूं मैं? अभी अजयपाल जी बोल रहे थे कि अरे क्या दो लोग आने वाले थे वो आए ही नहीं, अभी क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? नहीं तो वो आ गए वो, और वो भी अगर बैठते यार तुम दोनों नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाता, ऐसा अगर बोलते तो क्या होता था? उसका भी गया और इसका भी गया, सबका गया। तो इसलिए कभी कभी अकेला ही चलना पड़ता है, अगर कोई साथ ना दे तो अकेला ही चलना पड़ता है। ये बुद्ध धम्म का मार्ग है, इसको ही इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ग्रुप है तो ग्रुप के साथ ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहां हमें ग्रुप से भी अलग होना पड़ता है। तो आगे चलेंगे हम तीसरे कड़ी की ओर, वो है प्रमोद। उसको संस्कृत में प्रामोद्य कहा है, प्रामोद्य, और पाली में पामोज्य कहा है, और हम मराठी में उसको प्रमोद कहते हैं या आनंद। यह प्रमोद श्रद्धा से उत्पन्न होता है। जिसकी तलाश में हम थे वो अब हमें मिल गया है। किसी को वो नहीं मिला है, लेकिन कम से कम उसको उसकी झलक तो मिली है। इसको पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, असंतुष्टि का सामना किया है, और अब कहीं जाकर हम आनंदित हो गए हैं, हमारा आनंद अभी बढ़ रहा है। अब हम उस ऊंचे विचार की ओर, ऊंचे आदर्श की ओर बढ़ रहे हैं, उसके संपर्क में आ रहे हैं, और हमारा जीवन अभी बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी हमारा ये जो संपर्क अभी बनाए रख रहे हैं हम, तो वह केवल बौद्धिक या सैद्धांतिक नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी नहीं है और डॉक्ट्राइनल भी नहीं है। अब हमारे हृदय ऊंचे उठ गए हैं, यानी हम अभी नजदीक जा रहे हैं, उस आदर्श के नजदीक जा रहे हैं, ऊंचे उठ रहे हैं, हृदय ऊंचे उठ रहे हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के माध्यम से मेरा हृदय अब कैसे हो रहा है, अब ऊपर उठ रहा है। ऊपर इसलिए उठ रहा है कि अभी जो कुछ है उसका मैं स्वीकार करूं, अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ संभ्रम नहीं है, अभी पूरी तरह से मैं तैयार हूं उसको अपनाने के लिए, उसका स्वीकार करने के लिए। और इस श्रद्धा के कारण मुझ में अभी पूरी तरह से बदलाव आया है। अभी तक मेरा जो अहंकार था, मेरा जो अहमगंड था, वो अभी थोड़ा सा विचलित हो रहा है। यानी अपने अहंकार को अभी हम चुनौती दे रहे हैं। अभी तक चुनौती का सवाल ही नहीं था, अहंकार जैसे बोलता है वैसे ही हम अभी तक कर रहे थे, अभी हम उसको चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर की दान भावना बढ़ रही है, और हम बहिर्गामी बन रहे हैं, औरों की ओर देख रहे हैं, औरों को देख रहे हैं, औरों का दुख देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहां होती है प्रमोद में, और वह है अन्न, लैंगिकता और नींद। अन्न, लैंगिकता और नींद हमारे नियंत्रण में आ गई है। वी आर हैविंग कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, फूड, सेक्स एंड स्लीप। तो अभी अपने चर्चा के लिए यह सवाल है कि ये तीन बातें हमारे अंदर से कहां तक कम हुई है। कौन सी बातें? स्लीप, ये इंग्लिश में हो गया, हमको समझ में नहीं आया।
हमारी जो है खाने पीने की चीजों की आसक्ति
जी,
लैंगिकता
जी,
और जो हमारी आलस है, नींद है,
नींद है। तो ये नियंत्रण में आ गए हैं। ये प्रमोद जिसमें बड़ा है उसके नियंत्रण में आए। मैं पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि ये हमारे नियंत्रण में आए हैं क्या, और यदि नहीं आए तो कब आएंगे। इस प्रमोद की अवस्था में हम पहले की तुलना में बहुत ही सरल बन गए हैं, हमारा जीवन बहुत सिंपल बन गया है। अहिंसा का तत्व हमने अपनाया है, और हम अभी संतुष्ट हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए सब बातों के पीछे हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अभी मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, ऐसा पहले लगता था, लेकिन अभी वो लगाव मेरा कम हो गया है। अभी उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। किसकी परवाह नहीं करता? कि मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, और बहुत कुछ है, खाली दो ही बातें बताया मैंने। तो सब कुछ जो चाहिए अभी उतनी आसक्ति अभी नहीं है जो पहले थी। अभी हम पूरी तरह से मुक्त होने लगे हैं, अनासक्त होने लगे हैं। अभी हमारा जीवन बहुत ही सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, यहां एक बात बुद्ध कहते हैं कि दो बातों से जल्द हमें बाहर पड़ना है, बाहर निकलना है, और वह है गिल्ट जिसको कहते हैं अपराधीपन की भावना, और रिमोर्स जिसको कहते हैं पश्चाताप। ये दो बातों से जल्द बाहर निकलना है, अपराधीपनाची भावना आणि पश्चाताप। जब हमारी कुछ गलती होती है तो हमने उसका स्वीकार करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल गलती का स्वीकार करके ही वहां रुकना नहीं है, तो यह गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी इसके लिए भी प्रयास करना है। नहीं तो बहुत बार हम गलती ही करते बैठते रहते हैं और माफी भी मांगते रहते हैं, लेकिन सुधार तो कुछ नहीं होता। इसके लिए पापदेशना एक महत्वपूर्ण अंग है, पापदेशना करनी चाहिए। कभी कभी बहुत बार हम ये सॉरी शब्द जो है ये इतना चिकना हो गया है कि हाथ में से फिसल जाता हूं, पकड़ लिया तो फिसल जाता, कुछ भी होगा तो सॉरी, कुछ भी होगा तो सॉरी। अरे बार बार कर रहा है और सॉरी सॉरी बोल रहा है, क्या है? तो एक बार सॉरी बोलो और वो बात फिर दोबारा नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। वो इंग्लैंड में अमेरिका में हमेशा ये शब्द मुंह से निकलते रहता है, और सॉरी बोला क्या के लिए, सॉरी क्या जरूरत है सॉरी बोलने की हमेशा हमेशा, और थैंक यू भी बोलने की बहुत बहुत ज्यादा है, थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन ये इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी भी बात को थैंक यू, पानी दिया तो भी थैंक यू, पानी नहीं दिया तो भी थैंक यू क्योंकि नहीं दिया तुमने इसलिए भी थैंक यू तो ये बहुत चिकने हो गए शब्द। अपने मराठी में भी ऐसा ही है, कुछ शब्द है हिंदी में कौन से शब्द है मुझे नहीं मालूम, ऐसे चिकने हुए हुए कौन से पता नहीं कौन से, सॉरी इंग्लिश में बोलते क्या इंग्लिश शब्द आ गए ठीक है हाँ बोली कौन सा शब्द है, अच्छा धन्यवाद, वो उधर से ही आया, वो थैंक यू से ही धन्यवाद वो थैंक यू से ही धन्यवाद आया। तो हमारी श्रद्धा बढ़ने के कारण, हम शीलाचरणी बनने के कारण, हमारे अंदर सुविचार बढ़ने के कारण हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन बातें, एक तो श्रद्धा का बढ़ना, शीलाचरण, और तीसरी बात सुविचार। इन तीनों के माध्यम से हमारे जीवन में स्पष्टता आती है और हम प्रमोद से भर जाते हैं। तो ये प्रमोद बढ़ाने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी है, हमारा आनंद द्विगुणित करने के लिए, दुगुना करने के लिए ये तीन बातें आवश्यक है। एक तो श्रद्धा का होना है, दूसरी बात हम शीलाचरणी होना है, और तीसरी बात है सुविचारों से हमारा मन भरना है। और यह प्रमोद जब निर्माण होता है तो हम जो कुछ भी शिक्षा ले रहे हैं उस पर हमारा पूरा विश्वास बढ़ जाता है। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जो जो कुछ शिक्षाएं हम बुद्ध की ओर से ले रहे हैं उनमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। और उससे श्रद्धा भी हमारी बढ़ती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा और प्रमोद ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। श्रद्धा और प्रमोद दोनों भी साथ साथ में ही चलते हैं। अभी अगली कड़ी है प्रीति, जिसको पाली में पीति कहते हैं, पीति, और इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं, रैप्चर, RAPTURE। अभी हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे आगे बढ़ रहे हैं तो जो कुछ पहले की अवस्था हमें प्राप्त हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते, फिर आगे की क्या अवस्था है उसकी ओर हम बढ़ते रहते हैं। तो केवल आनंद या प्रमोद से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं, हमें इससे भी आगे और कोई अवस्था है क्या, उसकी तलाश में हम रहते हैं और हमें फिर प्रीति का अनुभव आता है। यह शब्द बहुत ही भारी शब्द है, प्रीति का अनुभव, अति तीव्र, रोमांचकारी, उत्कट आनंद की भावना, उसको प्रीति कहते हैं। अति तीव्र, बहुत ही इंटेंस, रोमांचकारी और उत्कट आनंद देने वाली भावना, उसको प्रीति कहते हैं। इस प्रीति का अनुभव हम सिर्फ मानसिक तौर पर ही नहीं तो शारीरिक तौर पर भी लेते हैं। इट इज नॉट ओनली मेंटल बट इट इज ऑल्सो फिजिकल। हम सबको पता है कि कोई पेंटिंग अब जब हम देखते हैं तो पूरी तरह से हम उसमें गढ़ जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं और उस पेंटिंग से अपने आप की ओर देखने लगते हैं। जब कोई संगीत, सुंदर मधुर संगीत जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से हम उसमें मग्न हो जाते हैं। जब निसर्ग को हम देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से गढ़ जाते हैं। निसर्ग और मैं बिल्कुल अलग नहीं है ऐसा हम मानते हैं। जैसे भंते जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है एक पेंटर का। वो पेंटर अपने गुरु के पास जाता है और बांबू का पेंटिंग मुझे करना है ऐसा बोलता है, तो गुरु ऐसा नहीं कहते कि हाँ ठीक है कर दे पेंटिंग कर दे, ऐसा नहीं बोलते हो। वो कहते हैं कि पहले बांबू को देखना सीखो, और जब वो पेंटर बांबू को देखते रहता है तो हर एक ऋतु में वो बांबू में कैसे परिवर्तन आता है, उसमें कैसे कैसे बदलाव आते हैं, कैसे कैसे वो बढ़ता है, कैसे पीला हो जाता है, कैसे हरा हो जाता है, इस तरह से कई सालों तक वो बांबू को ही देखते रहता है और फिर वो बांबू का पेंटिंग नहीं तो खुद ही वो बांबू बन जाता है। इसका मतलब ऐसा खड़ा हो गया ऐसा नहीं है, यानी बांबू से वो एक रूप हो गया है, बांबू और वो अभी अलग नहीं है। तो इस तरह से एक रूपता की जो भावना है वो भावना ये प्रीति में आती है। जब संगीत सुनते हैं हम तो हम अलग वहां बैठे हैं और सुन रहे हैं ऐसा नहीं लगता, मानो हम उसमें ही शामिल है। इतना ही नहीं तो मैं ही कुछ कर रहा हूं वहां, ऐसा अनुभव हमें कभी कभी आता है। अभी जो संगीत के जानकार है उनको ही आता है हाँ, और किसी को भी अगर शास्त्रीय संगीत सुनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे ये क्या लगा है रे बाबा, ये ये कब तक सुनूं अभी, मैं इसको बंद कर दे अभी, हमें पता ही नहीं कि वो कौन सा आलाप चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि हम कैसे हैं, बिल्कुल अनपढ़ है। उस लिहाज से देखा जाए तो वो संगीतकार से बिल्कुल अनपढ़ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी बोलते हैं ये राग चल रहा है, वो राग चल रहा है, हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा राग चल रहा है, कुछ तो भी गाना चल रहा है इतना ही हमें मालूम होता है, लेकिन कौन से राग में गा रहा है वो समझ में नहीं आता। जब तक उस अवस्था में जब हम जाते हैं, संगीतकार की अवस्था में जाते हैं, तब हमें और ज्यादा मजा आने लगेगा जी, अनुभव आए। जब हम पूरी तरह से भाव विवश होते हैं, कंप्लीटली इमोशनल जब हम बनते हैं, तब हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये प्रीति का अनुभव। कुछ लोगों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ये भी प्रीति का अनुभव। यही प्रीति का और उत्कट आनंद का यह अनुभव है। ध्यान में इस प्रकार के अनुभव हमें आते हैं, प्रीति के अनुभव। जैसे आपको अगर याद होगा तो रूप ध्यान की चार अवस्थाएं हैं, तो उस रूप ध्यान की चार अवस्थाओं में प्रीति का अनुभव आता है। जो पांच ध्यानंग है, कौन से है ध्यानंग, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, तो ये यहां प्रीति आई है। प्रीति का अनुभव हम ध्यान के माध्यम से ले सकते हैं। तो ध्यान में जो अनुभव आते हैं प्रीति के, उसके पांच स्तर बताए हैं, पांच प्रकार से हम ध्यान में प्रीति का अनुभव कर सकते हैं। पहला है शरीर पर रोंगटे खड़े होना, दूसरा अनुभव है जैसे बिजली चमकती है वैसी कुछ चमकाहट हमारे ध्यान में हमें दिखाई देती है, शरीर से कुछ लहरें उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होते हैं या वेवलेंथ्स जिसको कहते हैं, तो ये वेवलेंथ्स या लहरें शरीर में उत्पन्न होती है। चौथा अनुभव बताया है, शरीर ऊपर उठ जाता है, हल्का बन जाता है, और पांचवा अनुभव है जैसे कोई गुफा में पूरा पानी भर जाता है, तो वैसे ही हमारा पूरा शरीर प्रीति से भर जाता है। तो तो अभी दूसरा सवाल यहां हम चर्चा के लिए लेने वाले हैं कि ये जो अनुभव अभी बताए हैं इसमें से कौन से अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। ये फिर एक बार दोहराऊं क्या लिखा लिख लिया है? तो इन पांच अनुभवों में से कौन से अनुभव मुझे आ रहे हैं? अभी एक बात ध्यान में रखने है कि ये जरूरी नहीं है कि ये अनुभव आना ही चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं तो कहां बैठता हूं, किधर भी नहीं बैठता मैं इधर, ऐसा अगर बोल के ध्यान ही छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि ये अनुभव आना चाहिए, लेकिन प्रीति के अनुभव है ये। लेकिन हम उस अवस्था तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें ये अनुभव नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, ये आशावाद है, यहां आ सकते हैं। आपके अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कुछ अलग अनुभव होंगे, इसके अलावा भी कुछ अलग अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान के अनुभव है, हर एक व्यक्ति में यही अनुभव आना चाहिए ऐसा नहीं है, और कोई अनुभव आपको आते होंगे तो उसके आप चर्चा कर सकते हैं। तो प्रीति में भंती जी क्या कहते हैं कि प्रीति में हम बंदिस्त ऊर्जा को खुला कर देते हैं, हमारी जो क्लोज्ड एनर्जी है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसको हम रिलीज करते हैं, वो खुला करते हैं। और ये ब्लॉक्ड एनर्जी या बंदिस्त ऊर्जा जब खुली हो जाती है तब हमें प्रीति का अनुभव आता है। ऐसे जो ब्लॉक हमारे मन में बैठे हुए हैं तो ध्यान के माध्यम से या प्रीति का अनुभव होने से वो पिघल जाते हैं। अपने भीतर जो गहराई है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी उलझने जो हमारे मन में पैदा होती है उसको हम अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। छोटी छोटी उलझने बहुत बार हमारे मन में आती है, और एक अनुभव ऐसा आता है कि पूरी नस नस में ये प्रीति भरी हुई हमें दिखाई देती है, हमारे पूरे शरीर में, पूरे नस नस में ये प्रीति का अनुभव है ऐसा हमें लगता है। और एक कड़ी लेके हम रुक जाएंगे। अगली कड़ी है प्रश्रब्धि। प्रश्रब्धि इसको लिखूं क्या, क्या आता है लिखने, सब है लिख दूं? प्रश्रब्धि उसको इंग्लिश में ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी, और उसको पाली में पसद्धि कहते हैं, पसद्धि। अब प्रीति से प्रश्रब्धि का निर्माण होता है। प्रीति में जो शारीरिक अनुभव हमें मिले थे या प्रीति में जो शारीरिक गुण हमने बढ़ाए थे वह अभी यहां शांत हो जाते हैं। यहां हमें शरीर की पूरी स्थिरता महसूस होती है, हम पूरे अभी स्थिर है, स्टेबल है, शांत है, ऐसा अनुभव हम करते हैं। प्रीति में शारीरिक अनुभव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन अभी प्रश्रद्धि में हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस देखते हैं, भावनिक अनुभव के साथ जुड़ जाते हैं। शारीरिक अनुभव तो बहुत लिए हैं आनंद के और बाकी सब गुणों के, अभी भावनिकता से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति में जो अंदर के अंदर जो कुछ शरीर में हलचल मच रही थी वो हलचल अब यहां शांत हो जाती है, क्योंकि यहां अपना मन अभी पूरी तरह से शांत हो गया है। ग्रंथों में एक अच्छा उदाहरण दिया है जो भंते जी कोट करते हैं, एक रूपक ऐसा बताया है कि समझो एक साथ एक हाथी छोटे से तालाब में उतरता है, और हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, तालाब बहुत छोटा होता है। तो हाथी जब तालाब में उतरता है तो पानी ऐसा बाहर निकलता है, बाहर उड़ता है वो, ऐसे स्प्लैशेस। तो ये प्रीति का अनुभव है, जब स्प्लैशेस होते हैं ऐसा पानी बाहर आने लगता है, तो ये प्रीति का अनुभव है। लेकिन ये रूपक में आगे कहा है कि मानो बहुत बड़ा तालाब है या बहुत बड़ी नदी है, और उसमें ये हाथी उतरता है, पानी में उतरता है। तो जब बड़े नदी में या तालाब में जब हाथी उतरेगा तब पानी उड़ेगा क्या, पानी बाहर आएगा क्या? पानी बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल धीरे से वो हाथी पानी के अंदर जाएगा। हाथी जितना बड़ा है उससे कई गुना ज्यादा पानी गहरा है, पानी ज्यादा है, इसलिए वो स्प्लैशेस जो पानी बाहर फेंकने की जो बात है वो यहां हमें दिखाई नहीं देती, यहां रहती ही नहीं। तो इस प्रकार अब ये प्रश्रब्धि का अनुभव ऐसा है कि बहुत बड़ी नदी है और हाथी बिल्कुल आराम से उस पानी में ना रहा है, तैर रहा है। ये प्रश्रब्धि का अनुभव है। यहां प्रीति में जैसे शारीरिक अनुभव देखे थे तो शारीरिक अनुभव यहां शांत हो जाते हैं बिल्कुल, और भावनिक अनुभव सिर्फ अभी बाकी रह जाते हैं। और एक ले लूं क्या, 5 मिनट मुझे खत्म करना है। तो छठी कड़ी है सुख, जिसको ब्लिस कहते हैं, ब्लिस BLISS। अभी हम देख रहे थे कि हाथी कितने गहराई में गया है, पानी बहुत गहरा है और हाथी उस पानी में उतर गया है। हमारे अनुभवों के मुताबिक हमने प्रमोद से शुरुआत की, वैसे तो श्रद्धा से शुरुआत की, फिर प्रमोद का अनुभव हमने लिया, उसके बाद में किसका अनुभव लिया क्या मालूम किसका लिया प्रीति का अनुभव लिया और उसके बाद में प्रश्रद्धि का अनुभव लिया, और अब हम सुख का अनुभव लेने जा रहे हैं, सुख तक पहुंच गए हैं। यह सुख को अतीव आनंद ऐसा कहेंगे, अत्यानंद, इंटेंस हैप्पीनेस ऐसा कह सकते हैं। प्रश्रद्धि में हमने देखा कि भावनिक अंग तक हम अंग में अभी बदलाव आ रहा है, अभी यहां शारीरिक और भावनिक दोनों भी अभी शांत हो गए हैं। शारीरिक अनुभव भावनिक अनुभव ये दोनों भी अभी यहां शांत हो गए हैं और हम सुख का अनुभव ले रहे हैं। यह सभी भावनिक जो शक्तियां थी हमारे अंदर उनका पूरी तरह से अभी मिलाप हो रहा है। अभी जो हाथी थोड़े पानी में जब गया था तो क्या हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, अभी यहां पानी बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल शांत है, स्थिर है, जैसे वो हाथी अभी पानी में बैठ गया है, शांति से बैठ गया है। और ये जो अनुभव है ये ऐसा है कि पूरी शक्तियां हमारी जो अभी हम लगा रहे हैं एक डायरेक्शन से जा रही है, एक ही दिशा से वो बह रही है। ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां और एक बात महत्वपूर्ण नजर आती है, वो ये है इस सुख में कि यहां केवल सुख ही नहीं होता तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये जो चार ब्रह्म विहार की भावनाएं हैं, और शांति, इन भावनाओं का हमारे अंदर क्या हो जाता है, बढ़ाव हो जाता है, बढ़ जाते हैं, इन भावना को हम अनुभव करते हैं। कौन सी भावनाएं, सुख तो है ही, शांति, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन भावनाओं को। इस सुख की अवस्था में कोई भी नकारात्मक भावना नहीं रहती, कोई भी नकारात्मक भावना नहीं है, इसका मतलब यहां तृष्णा नहीं है, भय नहीं है, द्वेष नहीं है, चिंता नहीं है, अपराध की भावना नहीं है और पश्चाताप की भावना नहीं है। और अभी तक जो शक्ति हमने इन नकारात्मक भावनाओं की ओर लगाई थी वो नकारात्मक भावना अब पूरी तरह से सकारात्मक भावना में बदल जाते हैं। ये सभी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक भावना में बढ़ जाती, उसका परिवर्तन हो जाता है। और सुख के माध्यम से अब पूरी तरह हम सकारात्मकता में ही बहते रहते हैं। ये सुख के माध्यम से पूरी सकारात्मकता अभी यहां हमारे अंदर बढ़ गई है या हम उसमें बह रहे हैं। तो दो दो प्रश्न दिया ना मैंने, बस दो दो बाकी बस है। बाकी और भी पूरी दूसरी भी चर्चा हम अपने चर्चा गुट में कर सकते हैं, जो कुछ और बातें आई हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।